नमोताहि जाते भई अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, ऐसी निराकुल अवस्था पाने के लिए जहां की दुख ना हो, निरंतर विचार कर रहे हैं। जैसा आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर उपकार करके हमें मार्ग दिखाया है, हम उसी मार्ग पर चलकर वहां तक पहुंच सकते हैं। इस बात पर हम श्रद्धान करें, यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। अपने जीवन को अच्छा बनाने की यात्रा बिना श्रद्धान के नहीं शुरू हो सकती। सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझकर उनके प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा, जो समर्पण जागृत होता है, वहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के बीच में बहुत सारी मुश्किलें, विषमताएं आती हैं, जिनको कि हम अपने भीतर प्रकट हुए गुणों के माध्यम से एक एक करके पार कर लेते हैं, जीत जाते हैं। और गुणों से संपन्न होकर के अगर कोई दृष्टि से संपन्न व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वो निश्चित ही अपने जीवन को एक ऊंचाई दे पाता है। कौन सी चीजें हैं आठ जो दृष्टि की निर्मलता के साथ अपने आप प्रकट हो जाती हैं जीव के भीतर, अपन विचार कर चुके हैं। निशंकित और निर्भयपना सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के भीतर आपो आप हो जाता है। चोर भी निशंकित और निर्भय हो सकता है, बेईमान व्यक्ति भी निशंकित और निर्भय हो सकता है। निशंकित और निर्भय होने का महत्व नहीं है, महत्व दृष्टि की निर्मलता से युक्त होकर निर्भय और निशंक होने का है। निकांक्षित होकर के धर्म करके उससे संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं करना, ऐसी गुणवत्ता दृष्टि की संपन्नता से युक्त व्यक्ति के पास ही हो सकती है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले के शरीर को देखकर, उसकी मलिनता को देखकर उसके प्रति घृणा का भाव मन में उत्पन्न ना हो, बल्कि उसके आत्मिक गुणों की तरफ देखकर उनसे सहज ही प्रेम भाव और अनुराग उमड़ पड़े। अपने सच्चे रास्ते पर चलते हुए जाने कितने रास्ते तो हैं 363, जिन पर अलग अलग विषय सुख की सामग्री मालूम पड़ने पर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होकर निरंतर अपने मार्ग पर विवेक पूर्वक चलने वाला ही दृष्टि से संपन्न व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, ये भी अपन ने विचार किया है। हमारी जो भी यदि हम अपनी सारी क्रियाएं विवेक पूर्वक करते हैं तो वे हमारी क्रियाएं सार्थक हो जाती हैं और उनके माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचा उठा लेते हैं। और यदि वे ही क्रियाएं हम भाव शून्य होकर या कि बिना समझे अविवेक पूर्वक करते हैं तो वे क्रियाएं हमें उतना लाभ नहीं दे पाती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर विवेक जागृत करें, यह भी हमने सीखा। इतना ही नहीं, कोई सच्चाई के मार्ग पर चले तो संभव है उससे गलतियां हो जाए, क्योंकि जो चलेगा उसी से तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। हम उन दोषों की तरफ, गलतियों की तरफ नहीं देखेंगे। अगर वे दोष या गलतियां दिख भी जाती हैं तो चूंकि व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए हम और लोग जो सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं उनके बीच उसकी निंदा नहीं करेंगे, बल्कि दृष्टि से जो संपन्न है उनके बीच बैठकर इस बात की चिंता करेंगे कि कैसे सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले के अंदर जो गलतियां और दोष आ गए हैं वो निकल जावे। उन्हें प्रमार्जित करने के लिए चिंतित होंगे, इस बात के लिए चिंतित नहीं होंगे कि कैसे हम उनकी गलतियों को उजागर कर सकें। बड़ी चिंता हो जाती लोगों को, बड़े हितैषी हैं धर्म के, वो कहते कि अरे वाह, ऐसी गलतियां अगर हम सबके बीच में नहीं कहेंगे तो ये तो बढ़ती चली जाएंगी। जी नहीं, गलतियां कहने से और अधिक बढ़ती हैं, क्योंकि गलतियों का क्रिटिसाइज करो या समर्थन करो एक ही बात है, आप उनकी उपेक्षा करो, न निंदा न प्रशंसा। हम लोग संसार में मोक्ष मार्ग पर चलने वाले की गलतियां होने के बाद भी उसका समर्थन करते हैं, ये हम गलतियों को बढ़ावा देने में कारण बनते हैं। हम जानते हैं कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाला इस जगह गलत है, हम उसकी निंदा भी करेंगे और चार लोगों के बीच, लेकिन जाकर के उसी का समर्थन भी करेंगे, तुम तो ठीक कर रहे, चले जाओ, हम भी संग हैं, तुम तो एक मंत्र दे दियो हमें चुपचाप, सुबह तरिया में डलने से रुपये बजे खत्म, और तुम जैसा कर रहे हो वो करते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दो चार 25 लोग मिल करके और उसकी गलतियों का समर्थन करते चले जाएंगे, बताइए क्या यह दृष्टि की निर्मलता है? इससे अपना और दूसरे का कल्याण होगा? ऐसा अपने भीतर गुण आवे जिससे कि हम कम से कम न गलतियों की निंदा करें और न ही उनकी प्रशंसा करें, न समर्थन करें, बल्कि उससे सजग और सावधान होकर के संदेश लें। आचार्य महाराज हमारे हमेशा करते हैं कि दूसरे को गड्ढे में गिरते देखकर अपन उससे क्या शिक्षा लें, मेरे रास्ते में भी ऐसा गड्ढा जब आएगा तो मैं इससे बच करके निकल जाऊंगा, मैं इसमें नहीं गिरूंगा, ये शिक्षा मिली। ऐसी शिक्षा लेकर के और अपने जीवन का अपन कल्याण कर सकते। गड्ढे में जो व्यक्ति गिरा है तो उसकी निंदा करना के देखो तो देख के नहीं चले, रास्ता से वो गिर गए गड्ढा में, तो निंदा के लिए करने से क्या होगा? आप सावधानी पूर्वक चलना सीख लो, आप साइड से निकलो और हो सके तो उसको निकालने का प्रयत्न करो। वास्तव में ऐसी दृष्टि अपने भीतर भी आनी चाहिए। अगर कभी कदाचित अपन ने सोचा था कि गुस्सा नहीं करेंगे, अपन ने सोचा था कि श्रद्धा और आत्मज्ञान पूर्वक अच्छा आचरण करेंगे, व्रत नियम संयम धारण करेंगे, अपन ने वो सब करा, लेकिन कभी कभार परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो गईं कि हमारी श्रद्धा, हमारा ज्ञान, हमारा आचरण, लिए हुए व्रत नियम, उन सब से हम विचलित होने लगे, डगमगाने लगे। क्या रखा है मंदिर जाने में, क्या रखा है शास्त्र पढ़ने में, क्या होता है व्रत नियम पालन करने से, ऐसा मेरे भीतर अगर विचार आने लगे तो संभाल लूं अपने को, ये गड़बड़ है। फौरन समझ जाएं और अपने आप को पुनः सच्ची श्रद्धा, आत्मज्ञान और सच्चे चारित्र में स्थिर कर लें। दूसरा कोई विचलित हो तो उसे भी सावधान करके और अपने सच्चे मार्ग में स्थित कर दें। इतना ही नहीं, साधर्मी जो सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसके थोड़े से प्रयत्न के प्रति भी हर्ष का भाव, प्रेम का भाव, निस्वार्थ होकर के उसकी मदद करने का भाव अपने भीतर आपो आप आना चाहिए। अपने जीवन से, अपने उठने बैठने से, खाने पीने बोलने चालने से धर्म अपने आप दूसरे को प्रकट होता हुआ प्रतीत हो, ताकि वो भी उस धर्म की प्रशंसा करके उस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो जाए कि वाह, मेरी मां बेटे देखें कि देखो रोज मंदिर जाती है, मंदिर जाती इसीलिए तो हम इतनी चार बातें भी कह लेते कड़ी, लेकिन मेरी मां कुछ नहीं बोलती, चुपचाप शांत रहती है। वाह, इनके मंदिर जाने का फल इन्होंने यही पाया कि इतनी समता, इतनी शांति इनके भीतर आ गई, मैं भी मंदिर जाऊंगा। ये प्रेरणा आपके मंदिर जाने से उसे मिले, लेकिन अब तो हमारे धर्म करने से दूसरे को धर्म करने की प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि धर्म ना करने की प्रेरणा मिल जाती। ऐसी प्रभावना, वास्तव में प्रभावना वो है कि हम सच्चे मार्ग पर चलकर स्वयं अपने जीवन को ऊंचा उठाएं और अपने जीवन को ऊंचा उठते और अच्छा बनते देख करके और भी लोग उस मार्ग की सच्चाई को समझ करके उस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो जाए। चल पाए या नहीं चल पाए, कम से कम उसका सम्मान उनके भीतर उत्पन्न हो, उस पर चलने की उत्सुकता उनके भीतर, ऐसे गुणों से संपन्न होकर कोई अगर सच्चे मार्ग पर सच्ची श्रद्धा के साथ चलता है तो अपने जीवन को अच्छा बनाए बिना नहीं रहता। श्रद्धा बहुत प्रकार की होती है, बहुत लोगों को होती है, लेकिन सब लोगों की श्रद्धा को वैसे असंख्यात जीवों के लिए असंख्यात प्रकार से सम्यक दर्शन हो सकता, श्रद्धा हो सकती, लेकिन उस श्रद्धा को तीन भागों में विभाजित किया, एक तामसिक श्रद्धा, एक राजसिक श्रद्धा और एक सात्विक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा होती आलसी व्यक्ति की, अज्ञानी व्यक्ति जब श्रद्धा करता है, आलसी व्यक्ति भी श्रद्धा करता है, तब वो श्रद्धा उसकी तामसिक श्रद्धा कहलाती। कैसी श्रद्धा? हमें कछु नहीं करने, सब भगवान करें, हमारी तो बहुत श्रद्धा है भगवान पे, भी कर दे सब। इस प्रकार के आलस पूर्वक अगर अपन श्रद्धा करते हैं तो अपनी श्रद्धा भी तामसिक कहलाएगी। कोई लेवल थोड़ी लगाए कि इस व्यक्ति की श्रद्धा ही तामसिक है। अपन तपन के भीतर भी ऐसा भाव आ जाए कि नहीं, हमें तो कुछ करना नहीं है, भगवान ही करते हैं सब, ऐसे अपन आलसी होकर के और श्रद्धा करते हैं भगवान के प्रति। चोर भी श्रद्धा करता है भगवान के प्रति कि भगवान हम आपको 100 रुपया चढ़े हैं, वो तो फलानी जगह चोरी करने जा रहे हैं, अगर सफल हो जाए तो। अब बताओ जो श्रद्धा कौन सी श्रद्धा कहलाएगी? तामसिक श्रद्धा है, अज्ञानी जीव के द्वारा ऐसी श्रद्धा की जा रही अपने संसार के लिए, संसार बढ़ाने के हिसाब से जो भी श्रद्धा की जाती है वो सब तामसिक श्रद्धा है, संक्लेश उत्पन्न कराने वाली श्रद्धा, संसार बढ़ाने वाली श्रद्धा। अपन भी अपने भीतर टटोल के देखें कि श्रद्धा तो है, लेकिन किस प्रकार की श्रद्धा है? तामसिक श्रद्धा के बाद राजसिक श्रद्धा भी करने योग्य नहीं है। राजसिक श्रद्धा में व्यक्ति बड़ा महत्वाकांक्षी हो जाता है, उसके भीतर योग्यता नहीं होने पर पद प्रतिष्ठा पाने की लोलुपता बहुत अधिक होने के कारण वो कहता हमें तो पद मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, हमारी तो श्रद्धा बहुत है भगवान के ऊपर। अब लियो, हमें स्वप्न में भगवान ने कही है कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, जीत जाओ। अब बताओ जी, ऐसी वाली श्रद्धा ठीक है? आप स्वयं विचार करिएगा कि मैं अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए भगवान का सहारा ले रहा हूं। ऐसा कई बार अपन भी कर लेते हैं, लेकिन इससे बचना चाहिए कि ये सब तो मेरी श्रद्धा को राजसिक श्रद्धा की कैडर में ले जाकर के खड़ी करेंगे। सात्विक श्रद्धा वो है जहां हम जिसके प्रति श्रद्धावान है सच्चे देवगुरु शास्त्र उनके जैसे बनने की भावना रखते हैं, उनसे समता संतोष और साम भाव सीखते हैं और भगवान की प्रति श्रद्धा रख के उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनसे कुछ मांगते नहीं है कि मेरे भीतर ये श्रद्धा बनी रहे, बस इतना ही आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरी दृष्टि पर पर्दा ना आए जिससे कि मेरी श्रद्धा मिट जाए। अज्ञे ने लिखा कि भगवान अगर मेरी श्रद्धा उससे भक्ति से आप प्रसन्न हो तो मुझे वरदान मत दे देना, मेरे भीतर तो आपके वरदान झेलने की ताकत भी नहीं है। अगर मैंने अपनी पूजा और भक्ति और श्रद्धा से आपको प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे इतना ही देना भगवान कि अपनी पूजा कराते रहना। अब बताइए, मेरे भीतर आपके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए, ऐसे किसी कर्म का उदय मुझे ना आ जाए कि मैं अपने समता से संतोष से और सामभाव से विचलित हो जाऊं, वो सात्विक श्रद्धा है। अपन अपने भीतर झांक के देखें कि किन किन क्षणों में अपने भीतर सात्विक श्रद्धा होती है, किन क्षणों में वही श्रद्धा बदल करके राजसिक और तामसिक हो जाती है। श्रद्धा तो श्रद्धा है, अपने भीतर रहती है, विश्वास है, लेकिन वो विश्वास किस एटीट्यूड से, क्या आपका सोच है, क्या आपकी अप्रोच है, आप उस श्रद्धा से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, सांसारिक सुख पाने के लिए महत्वाकांक्षी होकर के भगवान के प्रति श्रद्धा का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, तो फिर वो श्रद्धा आपके जीवन का कल्याण नहीं कर पाएगी। है तो श्रद्धा, लेकिन वो सिर्फ आपके संसार के सुख दे पाएगी, आपको संसार ही बढ़ाने में कारण बनेगी। अपन को विचार करें कि हमें संसार बढ़ाने के लिए थोड़ी श्रद्धा करनी है, परमार्थानाम, हमने पहले कहा था कि संसारार्थानाम नहीं, न स्वार्थानाम, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और संसार साधने के लिए मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं कर रहा हूं, मैं तो परमार्थ के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र पर आप्त आगम और तपोव्रत के ऊपर अगर मैं श्रद्धा कर रहा हूं उनका स्वरूप समझ करके, तो उनके जैसे बनने के लिए, अपना संसार मिटाने के लिए। लेकिन इन तीनों का स्वरूप अपन के समझ में नहीं आया अगर तो गड्ढमड हो जाता, अपने अंदर अविवेक उत्पन्न हो जाता, विवेक नहीं कर पाते कि क्या भला है क्या बुरा है, किस में हित है किस में अहित है। तत्व कुतत्व पहचान है, इस तरह की पहचान अपने भीतर नहीं रह जाती। तीन मूर्ताओं का वर्णन भी अपन ने करने का प्रयत्न किया था कि मैं आठ गुणों से संपन्न और तीन मूर्ताओं या अविवेक से रहित होकर के, आठ अहंकारों से भी रहित होकर सच्ची श्रद्धा भगवान के ऊपर करूंगा, सात्विक श्रद्धा करूंगा, तब जाकर के मेरे भीतर भूमिका बनेगी दृष्टि की निर्मलता की। तो तीन प्रकार की मूर्ता पर अपन अपने अविवेक पर, अपने अंधविश्वास पर, सुपरस्टिशंस या ब्लाइंड फेथ, इस पर थोड़ा सा विचार कर दें। अपनी भी श्रद्धा बहुत सतही हो जाती है, डेप्थ में गहराई तक नहीं जा पाती, ऊपर ही ऊपर अपन विश्वास कर लेते हैं। चमत्कार में विश्वास करना क्या है बताइए, आप स्वयं निर्णय करिए इतने दिन में कि मैं जो चमत्कार से जुड़ा हूं या कि वितरागता से जुड़ा हूं, मेरी श्रद्धा को मैं स्वयं परख करके देखूं कि वो श्रद्धा सिर्फ चमत्कार की वजह से है या कि भगवान के जितेंद्रीपने और वितरागता की वजह से है। मैं मंदिर जाता हूं क्योंकि वो अतिशय होता है, वहां पर चमत्कार है, इसलिए मैं वितराग भगवान के पास जा रहा हूं। वो महाराज जी के पास जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बढ़िया से मंत्र तंत्र दे देंगे, अपने को पिछी लगा देंगे तो बढ़िया हो जाएगी। ऐसे गुरु पर श्रद्धा आपकी कैसी वाली श्रद्धा है? क्या आपके आत्म कल्याण में सहयोगी है? आप स्वयं विचार करें, मुझे कुछ नहीं कहना कि सही है गलत है, आप स्वयं विचार करें। मैं शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूं इसलिए कि चार लोगों के बीच में बैठ करके मैं विद्वान कहलाऊंगा? तो अपने आत्म कल्याण के लिए आपने शास्त्र पढ़ा था या कि संसार भर के लिए विद्वत्ता बताने के लिए पढ़ा था? ये स्वयं आप विचार करें, मेरी श्रद्धा विवेक पूर्ण है या मूर्ता से युक्त है। तीन तरह की मूर्ता का वर्णन आचार्य महाराजों ने किया है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। इस तीनों को लेकर के अपने मन में अविवेक का भाव उत्पन्न हो सकता है, परिस्थिति जन्य कर्म के उदय से भी हो सकता है और बाहर के वातावरण से भी हो सकता है। गिरिपातोग्निपातस्य लोकमूलम् निगद्यते। मेरे भीतर इस तरह के भाव तो नहीं आ जाते हैं, मैं इन सब में धर्म तो नहीं मानने लगता हूं। आपका सागर स्नान, समुद्र में नहाने से, नदी में नहाने से शरीर स्वच्छ नहीं होता, धर्म होता है। होता शरीर स्वच्छ है लेकिन मेरी आत्मा भी निर्मल हो जाएगी समुद्र में स्नान और नदी में स्नान करने से। बहुत बड़े बड़े नदी के किनारे पत्थरों के ढेर लगाने से मैं धर्म है। जितने पत्थर एक के ऊपर एक हम देख के आए थे वहां उदयगिरी खंडगिरी जब गए तो वहां पर बहुत एक के ऊपर एक पत्थर रखे थे। नदी तो सूख जाने की वजह से दूर से बह रही थी, हमने कहा ये काय को रखे? तो कहले महाराज यहां पर ऐसी मान्यता है कि एक पत्थर गोल धरो, वो के ऊपर रेत धर के दूसरो जमाओ, जितने जमाले हो अगर सात जमाले तो सात मो स्वर्ग मिले। अब बताओ जब नदी का पानी उस पर से आ जाता तो छोटा सा वो ऊंचा वाला पत्थर तो दिखाई पड़ता, तो लोग सोचते हैं कि यहां पर गड्ढा नहीं है, इस पर पैर रखा जा सकता, और जैसे ही पैर रखते हैं वो सब पत्थर खिसक जाते, सो डूब जाओ। और रोज इस तरह की घटनाएं वहां पर होती, लेकिन अज्ञानता देखिएगा, मूर्खता देखिएगा कि इसी पत्थर को जमाने में अपन ने धर्म मान लिया। इस तरह से लोक में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं अपन इजाद कर लेते हैं, उनमें धर्म मानने लगते हैं अपने अविवेक की वजह से। उन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई भाव तो छिपा हुआ है, लेकिन हम उस भाव को अनदेखा करके और उन सब में धर्म मान लेते हैं। कांटे की तराजू की पूजा की जाती काहे के लिए की जाती? अगर धर्म मान करके पूजा कर रहे हैं तो तराजू की पूजा लोक मूर्ता हो जाएगी, और अगर तराजू को यह मान करके पैर छू रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि मैं इस तराजू से ईमानदारी पूर्वक अपना आजीविका का साधन होने से नीति न्याय पूर्वक तोलूंगा, मैं इसलिए इसकी पूजा कर रहा हूं, मैं तिजोरी के पैर इसलिए छू रहा हूं ताकि मैं नीति न्याय पूर्वक इसमें जो धनराशि है वो रख सकूं, अच्छे से पैसा कमा सकूं, बेईमानी पूर्वक भी इसलिए मैं गद्दी पर बैठ करके उसके पैर छू रहा हूं, उसमें धर्म मान रहा हूं, तो फिर अविवेक हो जाएगा। इतना ही है, हर क्रिया में आप अगर उसके पीछे छुपे हुए भाव की जगह पर धर्म मान लेते हैं तो वहां पर लोक मूर्ता या अविवेक हो जाएगा। सग्रंथारंभ हिंसारंभ हिंसानाम संसारावर्त वर्तिनाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम वरोपलिप सासावान रागद्वेश मलिमसा देवता अदुपाशीत देवता मूढ़ मुच्यते। जो गुरु हैं उनका स्वरूप अपन को नहीं मालूम होने से, गुरु तो माता पिता भी हैं, गुरु तो अपन को एबीसीडी सिखाने वाले शिक्षक भी हैं, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए मुझे समता का पाठ सिखाने के लिए किसे मुझे अपना गुरु बनाना है। सग्रंथारंभ हिंसार नाम, जो अभी स्वयं राग देश से युक्त हैं और संसार के पांच पापों से युक्त हैं, जो समस्त परिग्रह से युक्त हैं, क्या वो मुझे समता का और कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं? जरा विचार करने की चीज है। जो स्वयं ही अभी कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक नहीं है, स्वयं अपरिग्रही नहीं है, आरंभ सारंभ से दूर नहीं है, धन पैसे और अनाप शनाप वैभव इत्यादि रखते हैं, क्या उनको हम आध्यात्मिक विकास के लिए अपना गुरु बनाने? ये अपना विवेक है। जिन चरणों जो चरण मोक्ष की तरफ जाते हैं उन चरणों में मेरा सौ सौ बार प्रणाम, लेकिन जो चरण मोक्ष की तरफ नहीं जा रहे हैं उन चरणों को अनादर तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं पूजेंगे कि वो मुझे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं उसे आध्यात्मिक गुरु मानूंगा, जिसको स्वयं अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर निष्परिग्रही और निरारंभी होकर संसार के सुखों की आकांक्षा के बिना ज्ञान ध्यान और तपस्या में लीन होकर के चल रहा है। इसी तरह से जिनका मन अभी 18 संसार के दोषों से राग द्वेष जन्म मरण से युक्त है, जो पनिशमेंट और अवार्ड देते हैं, जो हमें प्रसन्न होकर के हम पर कृपा करके अनुग्रह करते हैं कुछ देते हैं, और जो हमसे नाराज होकर के हमें अभिशाप दे सकते हैं, क्या इन्हें हम देवता माने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए? विचार करने की चीज है। माने या नहीं माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता, आपकी श्रद्धा आपके ऊपर, लेकिन आप स्वयं अपने विवेक से विचार करें कि मैं जन्म मरण जीतने के लिए, जन्म मरण से ऊपर उठने के लिए जो अभी जन्म मरण में से युक्त है उसको अवतार भगवान मान लूं? जरा सा विचार करने की चीज है। मैं तो जन्म मरण से पार होना चाहता हूं, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखूंगा, ऐसे देव के प्रति श्रद्धा रखूंगा जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है, जिनने अपने जन्म मरण को स्वयं नष्ट कर लिया है, जिन्होंने अपने इंद्रिय और मन को जीत लिया है, जिन्होंने संसार के 18 दोषों को जीत लिया है। इतना थोड़ा सा विवेक अपने भीतर होना चाहिए। क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय करने की क्षमता अपने भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग जिस तरफ जा रहे हैं वो ही सही है, हो सकता है सही की तरफ भी जा रहे हो, गलत की तरफ भी बहुत लोग जा रहे हो। इससे निर्धारण नहीं होगा कि भीड़ किस तरफ जा रही है, मेरे विवेक से मैं निर्धारित करूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक बार की घटना है कि भाई जरा सा कह करके मैं समाप्त करूंगा। मूर्ताओं के बारे में युधिष्ठिर जी और पांचों पांडव तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से भी कहा कि आप भी चलो तीर्थ यात्रा को, तो उनने कहा कि देखो हमें तो नहीं है समय। वो असल में उपदेश देना चाहते थे कि अकेले तीर्थ यात्रा से मन पवित्र नहीं होता, तीर्थयात्रा अपने मन की पवित्रता के लिए है, अगर वो नहीं हुई तो अकेले तीर्थयात्रा करने से क्या होगा, ये भी उपदेश देना चाहते सो कह दिया कि हमें फुर्सत नहीं है, तुम ही होवाओ। लेकिन सुनो, जब जाने लगे सो कहने लगे कि हमारी एक टूमड़ी होती, लौकी का बड़ा हुआ रूप, टूमा का हाउस कड़वी थी वो, सो वो उनके लिए देवी के लिए ऐसा करो कि हम तो नहीं जा पा रहे, लेकिन जितनी जगह तुम सफरो, स्नान करो, डुबकी लगाओ, सो एक होली लगवा जाइयो, इसकी वंदना हो जाएगी। बोला ठीक, बहुत अच्छा। बड़े खुश हुए सब लोग कि श्री कृष्ण जी ने दी है, और खुद तो एक एक बार डुबकी लगाई और उस कड़वी तुमड़ी को चार चार दफे डुबकी लगवाई कि श्री कृष्ण जी की दी हुई है। और वापिस तीर्थ यात्रा करके लौटे तो उनको श्री कृष्ण जी को अपनी कड़वी टुमड़ी थमा दी कि हमने तीर्थ यात्रा इसको भी करवाई, हमने भी करी, और हमने तो एक एक बार स्नान किया नदी में, इसको तो चार चार बार डुबकी लगवाई, बड़ी पवित्र हो गई। चलो ठीक है, तो अब इतने तीर्थ यात्रा से लौट के आए हो तो भोजन वोजन करके जाओ, सबको बात जमी की बात तो ठीक है, इतना सम्मान कर रहे हैं श्री कृष्ण जी हम तीर्थयात्रियों का। तीर्थयात्री बड़े प्रसन्न, सब बैठे पत्तल पे बढ़िया भोजन करने के लिए। अपन को तो दो ही चीजें चाहिए, आना फ्री, खाना फ्री, तो ले लो खूब सारी गैदरिंग, जितनी भीड़ चाहिए उतनी ले लो आप, आना फ्री हो और खाना फ्री हो, दो ही चीजें, आना जाना फ्री कर दो आप और खाना फ्री कर दो, ले साहब जनता टूट पड़ेगी, जितने जोड़ना उतने जोड़ लो। अब जो तीर्थ यात्री बहुत सारे इकट्ठे खाने के लिए बैठ गए और परोसना शुरू किया, श्री कृष्ण जी ने स्वयं कि मैं परोसूंगा, आप सब तीर्थ यात्रा से लौट के आए हैं, आपके सम्मान के लिए और सबके लिए मैं खीर खिलाऊंगा, मैंने बहुत बढ़िया खीर बनाई है, बनवाई है। तो सबको और प्रसन्नता हुई कि एक तो श्री कृष्ण जी परोस रहे हैं और वो भी खीर परोस रहे हैं, अपने चम्मच बड़ी हुई है, चम्मच छोटी नहीं, बड़ी चम्मच से सबको खीर परोसते चले गए, सबको खीर परोस दी। अब कहा कि आप सब लोग ग्रहण करो, मन शुद्धि पे चशुद्धि तो नहीं बोली हुई है, कही कि भाई जो जीव आप जो प्रक्रिया है, तो जैसे ही उन्होंने एक एक ग्रास खाया है और थू थू करने लगे, कहने इतनी कड़वी, अरे बोले बादाम डली है भाई, किसमें कहानी डले हैं कि ये सारे डली है, कहां कड़वी है, लौकी की खीर है, और ये वही लौकी है जिस लौकी ने तीर्थ यात्रा करी तुम्हारे साथ, जिसने चार चार दफे स्नान किया है तीर्थ पर, उस लौकी की कड़वाहट नहीं गई तो उसकी तीर्थ यात्रा का औचित्य क्या हुआ। मैं ये बताना चाहता था, ये उपदेश सुनकर के सब दंग रह गए कि तीर्थ यात्रा की सफलता तो तब है जबकि अपन अपने भीतर अपने मन को निर्मल कर सके, अपने विवेक को जागृत कर सके, और तभी अपना जीवन अच्छा बन पाएगा, कल्याण हो पाएगा। एक और छोटी सी घटना है, एक व्यक्ति साधु जी के पास पहुंचा, समझ में आ जाएगी जल्दी से, वैसे तो सबको समझ में है, मालूम है कि का विवेक है, का विवेक है, सब जानते हैं, फिर भी क्या हुआ कि साधु जी के पास राजा साहब पहुंचे कि हमें दीक्षा दे दो, हमें अपने साथ में रख लो। अब राजा साहब हैं तो जितने भी और जो उनके शिष्य थे बड़े प्रसन्न भए कि हमारे गुरु जी अगर राजा साहब को दीक्षा दे देंगे तो बहुत बढ़िया, आश्रम की बहुत प्रशंसा हो जाएगी। लेकिन गुरुजी भी कमती नहीं थे, उनने राजा साहब से कहा कि अभी हम आपको अपना शिष्य बाद में बनाएंगे, पहले आप आश्रम में झाड़ू लगाने का काम शुरू करो। और ये बड़ी मुश्किल, राजा साहब और झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया, साल भर निकल गया झाड़ू लगाते लगाते, एक दिन कहा कि भगवान अब तो बहुत परीक्षा हो गई, अब तो अपना शिष्य बनाओ। उनने कहा नहा धो के आओ, हम आज तुम्हें शिष्य बना लेंगे अपना। नहा धो करके बड़े प्रसन्न मन से और गुरु जी के पास आने लगे, तो क्या हुआ, अचानक गुरुजी ने बोल दिया था उस झाड़ू लगाने वाली को कि तुम इतना ही करना कि जोर से एक झाड़ू लगाना जिससे कि सारी धूल उड़ करके नहाए धोए हुए राजा साहब के ऊपर गिरे। बस इतना ही सा किया उसने। जैसे राजा साहब नहा धो के गुरुजी के पास आने लगे, उसने झाड़ू इतने जोर से मारी, उछाला उससे धूल वगैरह कि वो सब उड़ करके राजा साहब के ऊपर चली गई। राजा साहब बहुत गुस्सा में आ गए, तू मुझे समझती क्या है, कल तक मैं राजा था तब तो डरती थी मेरे से, आज मैं यहां पर गुरुजी के पास आया हूं तो इतना भी विवेक नहीं तुझे कि मेरे ऊपर धूल उड़ा रही है। सावधान संभल के रहा कर बहुत डांटा वाटा उसको और फिर से नहाने चले गए और नहा धो के गुरुजी के पास आए कि ले अपना शिष्य बना दो। कि ले अभी नहीं, अभी तो तुम कुत्ते की तरह भौंकते हो, थोड़ी दिन और रहो, अब देखो। बहुत ऐसा कह दिया उनको, राजा साहब भी दंग के, आप भैया बनने तो और साल भर तक झाड़ू लगाई। उसके बाद एक दिन कहा कि अब तो बहुत परीक्षा हो गई, अब दे दो। तो कहा जाओ नहा दो करके, तो नहा दो की आए आने लगे तो धीरे से उस झाड़ू लगाने वाली को कह दिया कि अब जोर से नहीं लगाना झाड़ू, धीरे से झाड़ू राजा को छुआ देना, लगाते लगाते ऐसा सो नहीं करना कि हमने छुआई है, वो तो लगा लगा छुप गई ऐसा। ठीक भाई, जब राजा साहब नहा धो के आए तो जैसा उससे कहा गया था झाड़ू लगाने वाली से, तो उसने हल्के से झाड़ू लगाते लगाते राजा के पैर से झाड़ू टकरा गई। राजा साहब ने बहुत गुस्से में उसको देखा, कहा कुछ नहीं अब की बार, थोड़े परिणाम शांत हुए, लेकिन अभी भी गुस्से में देखा उसके लिए और वापस फिर से नहाने चले गए। नहा धो के गुरु जी के पास आए कि ले गुरु जी अब तो मैं योग्य हूं, मुझे आप अपना शिष्य बना दिए। कह ले अभी तो तुम उल्लू के समान घूर करके देखते हो, अब बताओ अभी कुत्ते के समान कहा था, अब उल्लू के समान हो गए, अभी अब और लगेगा अभी समय, एक साल और झाड़ू लगाने का काम किया। जब स्नान करके और गुरुजी के पास शिष्यत्व ग्रहण करने आ रहे थे, तब तीसरी बार गुरुजी ने कहा उस झाड़ू लगाने वाली से कि अब तो तुम कुछ भी नहीं करना, झाड़ू लगा करके जो कचरा उठाया है उस कचरे की टोकनी ही राजा के ऊपर डाल देना, अब तो बहुत अति हो जाएगी। और तीसरी बार में जब राजा साहब नहा धो के आए तो उस झाड़ू लगाने वाली ने सब में झाड़ू लगा के जो कचरा इकट्ठा हुआ था वो कूड़ा कचरा राजा के कपड़ों पर उड़ील दिया। लेकिन राजा साहब नहा धोकर के आए होने के बावजूद भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कचरे को हटा करके और उस झाड़ू लगाने वाली को बोले कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे भीतर बैठे हुए चांडाल को विदा कर दिया, क्रोध ही चांडाल है जो मुझे बार बार छू लेते था और मुझे फिर स्नान करना पड़ता था, तुमने मेरी मदद की उसे हटाने में, उसे जीतने में, इसलिए तुम्हें धन्यवाद। ये गुरुजी तो देख ही रहे थे, इसको गुरुजी ने फौरन किसी शिष्य के लिए उठ करके दीक्षा देने नहीं पहुंचे, शिष्य उनके चरणों में आया लेकिन राजा साहब के पास स्वयं चल करके गए, आशीर्वाद दिया कि अब तुम मेरे शिष्य कहलाने लायक हो गए, अब तुम्हारे भीतर क्या भला है क्या बुरा है ये जागृत हो गया, भाव समता भाव जागृत हो गया, साम भाव जागृत हो गया, तुम्हारी श्रद्धा अब विवेकपूर्ण हो गई। भाई अपन भी इस उदाहरण से अपने जीवन में संदेश लें, अपने जीवन में भी कितनी विषमताएं आती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, लेकिन मैं अपने विवेक को बनाए रखूं, कभी भी लोभ लालच में आकर के मैं अविवेकपूर्ण क्रियाएं ना करूं, विवेक पूर्वक जो मैंने सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा की है उसे बनाए रखूं और उनके स्वरूप को समझकर ना लोक मूर्ता में पढ़ूं ना जो गुरु हैं उनसे विपरीत रास्ते पर चलने वाले हैं उनको गुरु मानो, जो देव नहीं है उनको मैं देव मानूं, अगर तो ये मेरी मूर्ता होगी, ऐसा विवेक मेरे भीतर उत्पन्न हो जाए। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की ईश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता
हूँ, शाका सन्नाटा मन में मन चारी चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़िया में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की कड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती है फूल झड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सामने क्या कोई हो जब को देवी जब की नदिया,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मनिया,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
देखे चंदन तंगुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के,
बमल मंगल दान रवा कुले जिन ब्रजे मुनिराज
मवंग, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संदस्त, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, मुनि श्री भूमि सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्य निर्भ्रामित
स्वाहापम नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा पर भास देखो भानु शिव कानी है,
क्षम द्रव्य जान देखो वंदे विधि भान देखो स्वपर पहचान देखो परम प्रमाणी है,
अनुभव बताए देखो जीवों के जताए देखो काबू न सताए देखो भव्य उरानी है,
जहाँ